बातें हैं, कई जगह लोग बोलते रहते हैं, आप एक वाक्य भी कुछ बोले तो लास्ट में लोग बोलते थैंक यू, और हम इंडियन लोगों के लिए कुछ नई चीज है, एक एक वाक्य पर धन्यवाद धन्यवाद कहना कुछ अति जैसा लगता है। लेकिन अगर किसी भी बात में आपसे कोई रास्ता पूछे, रास्ता कैसे जाएगा, आप बता दिए तो थैंक यू वेरी मच, थैंक जरूर करते हैं। तो इसी तरह से गृहस्थ लोग वहां अपने पत्नियों को या प्रेमिकाओं को आई लव यू, रियली आई लव यू ऐसा बोला करते हैं। तो स्त्री की मां, स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए अगर उनसे कभी कदाचित असत्य बोलना पड़े तो निंदनीय नहीं। स्त्री से नर्म विवाहित, और नर्म का अर्थ है मजाक, परिहास, परिहास में हंसी मजाक में कुछ बड़बड़ करके बोल दिया तो झूठा नहीं, अपनी प्रशंसा करे चाहे कुछ भी कह दे, परिहास कहते विनोद। और इस विवाह है, विवाह में झूठ बोलना निंदनीय नहीं, वर की प्रशंसा कर देना या कन्या की प्रशंसा कर देना और दोनों का विवाह हो जाए कोई बात नहीं, यह निंदनीय नहीं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लड़का नॉन मैट्रिक है, कह देता है बीए पास, ऐसा सुना था ऐसा देखा नहीं लेकिन सुना, और विवाह हो जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं। विवाह में असत्य बोलना निंदनीय नहीं, बल्कि बहुत झूठा चलता है विवाह में बहुत तरह से, कहते हाँ आपको हम पैसा देंगे विवाह कर लीजिए अभी बाद में दे देंगे, और बाद में तो बाद में हो जाएगा, हम नहीं देंगे, विवाह तो हो गया ना। स्त्री से नर्म विवाह है चाहे वृत्ति अर्थ है, और वृत्ति के लिए अपनी जीविका के लिए व्यापार में और सब में झूठ बोला जा सकता है, वह निंदनीय नहीं, क्योंकि शब्द बोल करके चलेगा नहीं, कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। और गो ब्राह्मण थे, गाय के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए हिंसा न, किसी की हिंसा हो रही हो खास करके बहुत अच्छे व्यक्ति की, तो उसकी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए नानूतम सा जुगुप्सित और नूतम जुगुप्सित मनुष्य, झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। इसलिए बलि यहां तुम्हारी जीविका संकट में है, ठीक है तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े तो तुम झूठ बोल सकते हो, या तुम कह सकते हो कि जो तुम पैर छोटा छोटा दिखाए हो उसी से नापो, इसको बढ़ाना नहीं, और मैं नहीं दूंगा, मैं इतना नहीं दूंगा, हमारा भी काम चले तुम्हारा भी काम चले, तुम कुछ ले लो, मैं राजा हूं राजा जैसा रहूंगा, तुम ब्राह्मण हो ब्राह्मण जैसा रहो, कह दो और तुम मत दो। लेकिन बलि महाराज माने नहीं, तो बलि महाराज के मुख से उत्तर आएगा कल, वह इससे भी उत्कृष्ट प्रसंग है। बलि महाराज एक एक शब्द का उत्तर दे रहे हैं, भगवान को संपूर्ण भूमंडल दे दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।
अब आगे कोई नहीं आएंगे कथा के समय, बहुत ही महान प्रसंग चल रहा है, कई श्रोताओं और वक्ताओं के बीच यह प्रसंग आ रहा है हम लोगों के पास। सबसे पहले तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इसको कहे हैं गंगा जी के तट पर, और उसी संवाद को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में व्यक्त किए हैं, और नैमिषारण्य में भागवत होने के बाद फिर हम लोगों की परंपरा में आ रहा है, हम लोग को प्राप्त है। तो यह संवाद कथोपकथन विश्व के सबसे बड़े विद्वान और भगवान के सबसे बड़े भक्त के बीच हो रहा है, और श्रोता स्वयं भगवान, भगवान सुन रहे हैं बैठकर। इसके पूर्व हम लोग सुने विद्वानों में सर्व शिरोमणि शुक्राचार्य जी का विचार, जिस विचार को भगवान कृष्ण ने प्रमाणित किया है अनेक बार, शुक्र नीति कहते हैं। और व्यवहारिक जीवन में शुक्राचार्य की नीति बहुत ही उपादेय है। यदि भारत के लोग शुक्राचार्य की नीति पढ़े होते तो अच्छी तरह से, तो विदेशियों का आक्रमण इस देश पर नहीं हो पाता। लेकिन एक तो सीख लिए कि अतिथि का स्वागत करना चाहिए। जितने लुटेरे बदमाश थे अतिथि बन बन कर रह गए यहां। इसीलिए नीतियां अच्छी तरह से सीख लेनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, कवि न उसना कवि, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूं। अब यही प्रमाण है कि शुक्राचार्य का अनुभव कितना सुंदर है। पर भगवान बैठे हैं और भगवान मांगने भी आए हैं और बलि महाराज प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं। उस दशा में बलि महाराज के संपूर्ण परिवार के हित का विचार करके शुक्राचार्य जो कुछ कह रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात है। परंतु भक्ति की दृष्टि से जहां साक्षात भगवान विद्यमान है उनको देने के विषय में यदि शुक्राचार्य के वचन प्रतिबंधक हो रहे हैं, बाधक हो रहे हैं, तो इस दशा में बलि महाराज ने उनके वचनों की अवहेलना की और भगवान को सब कुछ दे दिया। तो अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य के बातों का किस तरह से उत्तर दे रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज का यह उद्गार बहुत ही उत्कृष्ट है। और जो लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं उनके लिए यह सीखने लायक बात है, बहुत ही सुंदर उक्ति है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कुलाचार्येण एवं भाषितः गृहपतिः बलिः क्षणं तुष्णीं भूत्वा अवहितः सन् गुरुं उवाच। महाराज बलि को भगवान के प्रति दान देने के विषय में कौन मना कर रहे थे? कुलाचार्य। यहां कुलाचार्य का अर्थ है जिन्होंने वंश परंपरा से सबका हित किया था, रक्षा किया था। वे शुक्राचार्य हिरण्यकश्यपु के भी गुरु थे, हिरण्याक्ष के गुरु थे, विमोचन के गुरु थे, उसके पहले प्रहलाद महाराज के गुरु तथा परंपरा से बलि महाराज के गुरु। तो जिन्होंने वंश परंपरा से हित किया था कुल गुरु कुलाचार्य को, तो इस परिवार के साथ उनकी ममता थी, आत्मीयता थी। सब तरह से बचा करके लाए थे, देवताओं के आक्रमण से इनको पोसे थे, अतः स्वाभाविक ममता से कहे थे कि तुम संपूर्ण पृथ्वी दान मत करो, कुछ दो और कुछ अपने लिए रखो। कुलाचार्य बोल रहे थे इसलिए महाराज बलि क्षणम तुष्णीम भूत्वा कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए, विचार करने लगे क्या करूं। एक तरफ इतना महान व्यक्ति मना कर रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे जीवन सर्वस्व भगवान हमारे घर आए हैं हमसे मांगने के लिए, क्या करूं। इस समय वास्तव में इस परिस्थिति में व्यक्ति सोचेगा क्या करे, क्या निर्णय करें। तो तुष्णीम भूत्वा, तुष्णीम का अर्थ होता है चुप हो गए कुछ देर, क्षणम संस्कृत में क्षणम का अर्थ होता है किंचित कालम, कुछ समय चुप हो गए, एकाएक जवाब नहीं दिए गुरु को। लेकिन बाद में अवहित बलि महाराज ने पूर्ण एकाग्र चित्त से विचार किया और यही निश्चय किया कि भगवान के प्रतिकूल क्यों गुरु महाराज बोल रहे हैं। वह तो ठीक नहीं है। भगवान आए हैं हमसे मांगने के लिए, अरे जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी सन्यासी तपस्या करते रहते हैं, वही प्रभु हमारे घर आए हैं। अब इससे अच्छा समय हमारे जीवन में क्या आएगा कि मैं भगवान को दूं। अंत में विचार करके और फिर प्रहलाद महाराज की युक्तियां तथा स्वभाव पर विचार करके निश्चय किया कि निश्चित हमें भगवान को सब कुछ दे देना। तभी गुरु महाराज से कहते हैं, बलि महाराज ने कहा, सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनां कामं अर्थं यशो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिचित्। हे भगवान, हे हमारे जीवन के स्वामी, आपने जिस धर्म का वर्णन किया गृहस्थों के जिस धर्म का वर्णन आपने किया मैंने सुना। आपने ऐसे धर्म का वर्णन किया जो धर्म धर्म को क्षति न करे, जिसे धन बाधित ना हो, अर्थम कामम जसो वृत्ति, धन की क्षति ना करे वह धर्म, ये आप बता रहे हैं गृहस्थ का धर्म। वास्तव में सही बता रहे थे, जो बाधित करे थी, जो धन को नुकसान न करे और इस संसार में इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुएं बाधित न हो तथा इसने ये बड़ा काम किया, ये किया, वो किया, इस प्रकार का जस बाधित न हो तथा जीविका बाधित न हो। शुक्राचार्य ने कहा था कि मतद दानम प्रशंसन्ति जैन वृत्ति विपद्यते, जिस दान से अपनी जीविका ही संकट में पड़ जाए ऐसे दान की विद्वान लोग प्रशंसा नहीं करते। तो बल महाराज कहते हैं, ठीक वर्णन किए, सत्यम प्रोक्तम, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य है। ऐसा नहीं है कि वो आपके मन की कल्पना है, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। गृहस्थों के धर्म का आपने वर्णन किया, चार चीज कह रहे हैं कि ऐसे धर्म का जो धन को, काम को, यश को और वृत्ति को बाधित नहीं करता, बनी रहे, जीविका बनी रहे, बड़ा बड़ा काम होता रहे, यश फैले इसका अर्थ है, और सामान भरा रहे घर में तथा धन भरा रहे। लेकिन गुरु महाराज, मैं केवल गृहस्थ ही नहीं हूं, मैं इसके अलावा कुछ और भी हूं। और क्या है? मैं प्राह्रादी हूं। प्राह्राद का अर्थ प्रहलाद, प्रहलाद महाराज का अनुगामी, प्राह्रादी, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं। मैं वैसे सामान्य गृहस्थ नहीं हूं कि मैं धन के लोभ से इस ब्राह्मण को मैं धोखा दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। सचाहम वित्त लोभे न प्रत्यक्षे कथम बुझम प्रतिश्रुत्य ददानी इति प्राहरादि कितव जथा। आपके सामने मैं कहा हूं ददानी इति, मैं दूंगा प्रतिश्रुत्य, मैंने प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा करके इस ब्राह्मण को, और मैं फिर कह दूं कि नहीं दूंगा, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं, मैं उनका आदर्श देख रहा हूं। ठीक है, आपने अच्छी बात बताई, लेकिन मेरे गृहस्थी धर्म से मेरा और दूसरा धर्म बड़ा है, भगवान से जो मेरा प्रेम है, संबंध है, उसे मैं सर्वोपरि समझता हूं। कैसे मैं प्रत्यक्ष, कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा, कथम दुजम प्रत्यक्ष। तो भगवान जब जान गए हैं बामन देव को, तो ये विप्र क्यों कह रहे हैं, द्विजन क्यों कह रहे हैं? वास्तव में बलि महाराज अपने प्रेम को गोपन कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। प्रेम की रीति है कि वह अपने को छिपाना चाहता है, इसलिए द्विज कह रहे हैं, विप्र कह रहे हैं बार बार, भगवान कभी नहीं कहे। तो मैं इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा, और वह भी वित्त लोभ है ना, धन बचाने के लिए मैं कह दूं कि नहीं दूंगा, ये मुझसे नहीं हो सकता। आपने जिस धर्म का वर्णन किया बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए यह ठीक नहीं। मैं प्रहलाद महाराज के चरण चिन्ह का अनुगामी हूं, मुझे तो वही करना है जो उन्होंने किया। तो इस तरह की एक निष्ठा होनी चाहिए, मैं हूं क्या। धर्म का तो वर्णन हुआ, वो धर्म अन्य गृहस्थों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस प्रकार का जवाब बलि महाराज ऐसे गुरु से दे रहे हैं जिस गुरु ने उनको सब कुछ दिया था, वो सारा धन उनके गुरु की कृपा से मिला था, यहां तक कि उनका देह जो जीवित था गुरु ने जिलाया था, पर फिर भी भक्ति में भगवान को देने में जब गुरु ने बाधा किया, तब बलि महाराज उनकी अवहेलना कर रहे, नहीं इस तरह से बोल रहे। प्रत्यय चक्षे कथम दुजन, कैसे जवाब। आगे बलि महाराज कहते हैं, न य सत्या करो अधर्म इति होवाच भूमि। गुरुदेव यह पृथ्वी कहती है, इति होवाच भू, भू का तो पृथ्वी, यह पृथ्वी देवी कहती है या कहा है पहले कि असत्य से बढ़ करके दूसरा अधर्म नहीं। झूठ बोलने के बराबर, झूठ बोलने के समान अधर्म इस जगत में कुछ भी नहीं, पृथ्वी कहती है। और पृथ्वी कहती है कि सर्वम सोढ़मलम मन्ये रूपे लिख परम नरम, मैं झूठ बोलने वाले व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सब कुछ का भार सह लेती हूं, लेकिन जो व्यक्ति असत्य बोलता है उसका भार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो हिमालय से भी कोटि गुना भारी लगता है। इस समय पृथ्वी पर कितना वजन बढ़ गया होगा बताइए। ये पृथ्वी तो बहुत पहले कही थी, रीते अलिक परम नरम, अलिक परम जो वेद शास्त्र छोड़कर चलता है, झूठ बोलता है, ऐसे व्यक्ति को छोड़कर के सर्वम सोढ़ुम अलम, मैं सब कुछ सह सकती हूं, सब कुछ सह सकती हूं, समुद्र का भार, पर्वत का भार, वृक्ष मनु सब कुछ, लेकिन झूठ बोलने वाले का भार मैं नहीं सह सकती। हम लोगों को सीखना चाहिए, आदत डालनी चाहिए सत्य बोलने की। वास्तव में सत्य बोलने की आदत डाली जाए तो धीरे धीरे झूठ नहीं निकलेगा मुख से। अब तो बात की बात में लोग झूठ बोलते हैं, वहीं पर फोन आ रहा है, बैठे हैं, लड़का उठाता है, कह देते हैं, कह दो नहीं है घर से, तो अभी लड़के को ट्रेनिंग देने चालू किए झूठ बोलने। उसे क्या आशा करेंगे कि वो अच्छा व्यक्ति बनेंगे, अपने जन्मे हुए अपने बच्चे को कह देते हैं कह दो नहीं, इस तरह से बोल। अच्छा ये तो खैर झूठ कुछ सामान्य झूठ है, लेकिन किसी को देने की प्रतिज्ञा किए किसी दुखी आदमी को, और वह आशा किया बेचारा कि समय पर यह व्यक्ति हमको देगा, कहा है, और जब देने का अवसर आए तो कह दीजिए कि नहीं दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति का भार यह पृथ्वी नहीं सह सकती, ये रसातल चली जाती, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो अच्छा है झूठ बोलने वाले इस तरह से, कम से कम भगवान के अवतार तो कराते हैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। जैसे भार नहीं बढ़ेगा तो भगवान आएंगे नहीं भार दूर करने के लिए। बलि महाराज कहते हैं पृथ्वी देवी कहती है कि मैं सब कुछ का भार सह लेती हूं लेकिन असत्य बोलने वाले का भार नहीं सह सकती। जैसा सत्य और असत्य शुक्राचार्य जी के वचन के अनुसार आपने सुना कि हां दूंगा इसको सत्य कहा गया है और नहीं दूंगा इसको असत्य कहा गया है। कोई व्यक्ति किसी से कुछ अपेक्षा कर रहा है और वास्तव में वह व्यक्ति आवश्यकता में है, उसको जरूरत है और अपने पास सामर्थ्य भी हो देने की, हमारे देने से उसका हित होता है, उबार हो जाता है और उसको आशा दे करके भी हमने नहीं दिया, नकार दिया, तो ऐसे पापी का भार पृथ्वी नहीं सह सकती। आखिर धन किस लिए है, किस दिन काम आएगा, ले करके तो जाएंगे नहीं चाहे कितना भी इकट्ठा करें। अलीक परम का ये अर्थ तो बलि महाराज कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भार बढ़ाना नहीं चाहता, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि तुम जवाब नहीं दोगे, यदि दान दोगे तो तुम्हें बहुत संकट में पड़ोगे, दीनहीन हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, दरिद्रता का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। तब कहते हैं ना हम विभेद मिल आए, मुझे नरक से कोई भय नहीं, नरक जाना पड़ेगा मैं आनंद से चला जाऊंगा और न तो मुझे निर्धनता से भय है और न तो दुख के समुद्र से भय है और न अपने पद से हट जाने का भय है, यहां तक कि मुझे मरने से भी डर नहीं लगता है। जथा विप्र प्रलंभना, जितना किसी ब्राह्मण को धोखा देने, उसको आश्वासन दे करके और नहीं देना, उसको चीट करना, जितना मैं ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूं उतना मैं दरिद्रता से और मृत्यु से भी नहीं डरता। वो ठीक है, सह लूंगा, यदि दान दे करके मुझे नरक में जाना पड़े तो नरक मेरे लिए ठीक, या मेरे पास एक पैसा भी नहीं रहे मैं दरिद्र हो जाऊं वो ठीक है, लेकिन मैं कैसे किसी ब्राह्मण को धोखा दे दूं, कह दूं कि नहीं दूंगा और धन बहते हुए कह दूं, ऐसा नहीं हो सकता और मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसा शुक्राचार्य ने कहा था कि नरके पे निष्ठा मनने, तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा दान देने के बाद, तो बलि महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, ना हम विभेद में निर्यात, मैं नरक से नहीं डरता और न अधन्यात, हमारे पास धन न रहे मैं दरिद्र हो जाऊं इससे भी मुझे कोई दुख नहीं दिख रहा है, न असुखारणवाद, दुख का समुद्र हमारे ऊपर टूट पड़े, दुख के समुद्र में हमको डाल दिया जाए फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है और हमारा साम्राज्य छीन लिया जाए, पद चला जाए, यहां तक कि हमारा मरण हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं किसी ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, वंचना नहीं कर सकता और सब हो जाए हो जाए। तो इस प्रकार बलि महाराज अपने गुरु महाराज के वचनों का जवाब दे रहे और आगे कहते हैं कि गुरुदेव जब जब हासत लोक स्वीन संपरेतम धनाधिकम, इस जगत में व्यक्ति जो भी धन संग्रह करता है, धनाधिकम पैसा संग्रह करता है, बैंक में रखता है चाहे और भी बढ़ाता है, घर बनाता है या और जितना भी धन स्वजन जो कुछ भी है, यहां तक कि देह भी, देह से लेकर के और धन घर स्वजन जो कुछ भी, जब जब हासिक लोक स्वीन सब परे तम धना दिखाऊ, लेकिन जब जीव मर जाता है सम परे तम, मर जाता है तो धान आदि उसको छोड़ देते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो धन उसके साथ नहीं जाता है, घर नहीं साथ जाता है, स्वजन साथ नहीं देते हैं, देह भी अंश हो जाता है। तो एक दिन तो धन छूटेगा ही, धन जाएगा, घर भी जाएगा, साम्राज्य भी जाएगा, कम सम परे पर अपने आप धनाधिकम धन आदि मृतक जीव को छोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं जाते हैं। बंबई में रोज कितने आदमी मरते हैं, उनके साथ एक भी फ्लाइट गया? देह भी नहीं गया, देह नहीं राख बना दिया गया या जमीन के अंदर दफना दिया गया, कुछ भी गया साथ में जीव के? दो में से एक होगा, या तो धन को छोड़ करके वह व्यक्ति मरेगा, या उसके मरने के पहले ही धन ही उसको छोड़कर चला जाएगा। दोनों में एक होना है, तो छूटना तो निश्चित, चाहे मर करके चला जाए तब भी छूटा, या जीवित अवस्था में ही गरीब हो जाए कोई धन को ले ले तो धन तो छूटेगा ही, चाहे धन हमको छोड़े चाहे हम धन को छोड़, दोनों में एक होना निश्चित। तपस्य त्याग निमित्तं तु विप्रस्तस्य तेन च। शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, धन छूट जाएगा इसलिए धन का दान करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बच्चों को डांटती है हल्ला करना, लेकिन तुम कुछ धन दान करो, कुछ दान करो। तो बड़े महाराज कहते हैं कि तस्य त्यागे निमित्तं किम्, उस धन के दान से क्या लाभ है? विप्रस्तु से तेन च, मैंने दान भी किया, मान लीजिए मैं दूर भी और ब्राह्मण का चित संतुष्ट नहीं हुआ, ये बेचारा जितना मांगता है उतना नहीं दे पाया, तो उस धन के दान से लाभ क्या हुआ, क्या फायदा? जिसको हम खिलाने चले तो खिलाएंगे तो भर पेट खिलाएंगे ना, कि खा रहा है चार रोटी और दो रोटी देकर कह देंगे कि हो गया अब जाओ, और जब खिलाने चले तो पेट भर देंगे, पूरा भर पेट खिलाएंगे। शुक्राचार्य ने कहा कि आधा दो चाहे चौथाई दो कुछ दो, तुम्हें कहा कि नहीं, जितना से संतुष्ट होगा उतना दूंगा, और संतुष्ट होने में अब ब्राह्मण सारा जगत ले ले तो ले, कोई चिंता मुझे नहीं, लेकिन जब दानी बना देने चला हूं तो सारा दे करके रहूंगा, आधा क्यों दूंगा? यह विचार बलि महाराज को दे, तस्य त्यागे निमित्तं किम्, क्या फायदा है उससे? एक बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, देखिए संसार में जीव जो कुछ भी कमाता है, एक तो वस्तुएं पहले से ही रहती हैं संसार में, भले दूसरे के पास रहे या दूसरे रूप में रहे, लेकिन मनुष्य के जन्म लेने के पहले ही वस्तु रहती है, यह घर भी अपने कारण में रहता है, बालू पत्थर पानी आग सब रहता है, पहले मूल करके भवन का रूप बनाता है, और जो कुछ भी स्वजन कुछ तो बाद में आते हैं कुछ पहले रहते हैं, धान और भी जमीन भूमि आदि सब कुछ, और जो प्राण छूटता है तो सब कुछ छूट जाता है, कुछ भी साथ में नहीं जाता। तो जब सब कुछ छूटने ही वाला है तो उसको दे करके पूरे कमा करके क्यों नहीं मरा जाए? मरने पर सब चला ही जाएगा तो जीवित अवस्था में उससे पूरे अर्जन करके क्यों नहीं जाए? अपने जीवन में यदि दे दिया तो बहुत बड़ा पुण्य होता है, और इससे कई गुना सुंदर लोक और सुंदर शरीर सब कुछ मिलता है परलोक में दान के कारण, और ऐसे भी छूटने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पैसा कहीं निश्चित है कि खो जाएगा भूल जाएगा, तो उसे अच्छा है कि कोई खाए पिए या दान कर दे, क्योंकि जाने ही वाला, तो ध्यान की तीन गति है, प्रथम है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है विनाश। तो ध्यान की उत्तम गति है दान। थोड़ा सा किया गया दान कोटि गुना लाखों गुना परलोक में मिलता है, ये शास्त्र का वचन। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वास्तव में ये भगवान का हिसाब है। कोई व्यक्ति कोई दानी यहां पर दे रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, तो भगवान उस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो याद रहता है, तब परलोक में वो कई गुना रिवार्ड देते हैं, ठीक है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। और नहीं दान किया तो फिर भी तो छोड़ करके मरता ही है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा बताइए। धन ऐसे ही चला गया, न खाया न कमाया, न परलोक के लिए कुछ किया न कुछ। कुछ लोग तो मर जाएंगे, उनका रुपया बैंक में पड़ा रह जाएगा और वो भी स्वजन नहीं निकाल पाएंगे, बैंक वाले का हो जाएगा निश्चित, और उससे कोई पुण्य नहीं होगा। और पाप जो हुआ धन कमाने में, वो तो पाप की कमाई लेकर के गए भोगने के लिए, और जीत पाप करके धन कमाए वो धन ही छूट गया। तो कितनी बड़ी मूर्खता है, धन को कमाने में पाप किए, पाप का फल कई गुना भोगना पड़ेगा, वहां पूर्ण किए नहीं। धन कमाने में पाप जरूर होता है, थोड़ा हो या ज्यादा, इसलिए दान करना चाहिए, दान से सारे पाप ध्वस्त हो जाते, कमाई शुद्ध हो जाती है। कुछ न कुछ दोष है धन कमाने में, किसी न किसी का उत्पीड़न है, कुछ न कुछ दोष है। और विशेषकर आज के युग में तो शुद्ध कमाई कर पाना और कठिन। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जो कुछ भी धन कमाता है संसार में, मरने पर सब छूट जाता है। कौन कहां छूटता है, एक श्लोक में बताया गया है, धन जहां पड़ा है वहीं छूट जाता है, बैंक में पड़ा हो चाहे जमीन में गाड़ा गया। मरने पर ये धन अपने आप उड़ करके कफन के भीतर नहीं समा जाएगा कि हम चलते हैं साथ में, या चेक ले लेंगे दे देंगे वहां पर एक बंजा लेंगे उसको, सब छूट जाता है। तो पैसा कहां छूटता है, बैंक में या तिजोरी में, जो भी धनानि गे, धन तो घर में छूट जाता है। पशवश्च गोष्ठे, और पशु छूट जाते हैं गोष्ठ में, पशुओं के स्थान में, या कार गराज में छूट जाती है, मोटरसाइकिल अपने स्थान में छूट जाती, सब छूट जाता। तथा भार्या पत्नी कहां छूटती है, ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो चौकट तक, घर के द्वार तक, मना है उसे घर से बाहर जाना, बस उतना ही तक साथ रहता। भार्या गृह द्वार, भार्या गृह के द्वार तक जाएगी, जना श्मशान है, और अपने जो स्वजन है वे कहां तक जाएंगे, श्मशान तक। और देह कहां जाएगा, देह चिताया, देह चिता पर, और जीव अकेले जाएगा, और उसके पास जो धर्म किया है पूर्ण किया है वही साथ देगा, उसके पास वो बन करके पाथे रहेगा। कर्मानुग्रह अकेले जाएगा जीव, सब छोड़ जाता है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि जब तक अपने अधिकार में धन है, अपनी स्वजन है, अपना पुत्र है, अपनी पत्नी है, तो सबके द्वारा दूसरे का हित किया गया, इससे बढ़ करके बुद्धिमत्ता वास्तव में कोई नहीं। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मरने पर तो ये सब छोड़ ही देते हैं धन आदि, तो क्यों नहीं जीवित काल में ही इसको दे करके और पूर्ण अर्जन किया जाए, कीर्ति अर्जन किया जाए। शुक्राचार्य कहे ठीक है दो, लेकिन अपना भी काम चलाओ, उसका भी,
तब कहते हैं कि उसको उस धन को हम दान करके क्या करेंगे जिस धन से ब्राह्मण तृप्त नहीं हुआ, जितना से तृप्त होगा उतना देना चाहिए मुझे। और आगे कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैंने इतिहास पढ़ा है, सुना है बड़े बड़े लोगों का, श्रेय कुरंत भूताराम साधो दुष्टजास हुई दध्यम श्री प्रभुत को विकल्पो धरा दिस। ऐसे ऐसे इतिहास में महान पुरुष हुए हैं जैसे पद्मची ऋषि और श्री महाराज, जिन्होंने अपना देह दे दिया दूसरे के हित के लिए, आवश्यकता पड़ने पर भूतानाम श्रेय जीवों के हित के लिए अपना देह दे दिया, किसी ने हड्डी दिया, किसी ने मांस दिया, इस तरह से अपना देह दे दिया, तो कोई विकल्प धरा देश हो। फिर पृथ्वी दान करने में क्या सोचना है कि दू या न दू, दू या न दू, इसके विषय में क्या सोचना। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपना ये देह दे दूंगा इस ब्राह्मण के लिए, फिर पृथ्वी देने में क्या आनाकानी करनी, ऐसा मैंने सुना है इतिहास में। बलि महाराज कहते, देखिए दधीची मुनि का जस बलि महाराज गा रहे और श्री महाराज, श्री महाराज जदवंश में जन्म लिए थे, कबूतर के प्राण रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काट काट करके दे दिया। एक बार की घटना है, महाभारत में कथा है, श्री नाम के राजा थे, ये बहुत शरणागत वत्सल थे। देवराज इंद्र के यहां इसकी कहानी पहुंची कि महाराज बहुत महान राजा हैं, शरणागत वत्सल हैं। तो देवराज इंद्र और अग्निदेव श्री महाराज की परीक्षा लेने के लिए चले। इंद्र भगवान बाज बने, बाज पक्षी, और अग्निदेव बने कबूतर, कपोत पक्षी, और बाज खदेड़ा कबूतर को। कबूतर भागते 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 हाँपते हुए आया और श्री महाराज के गोद में गिर गया डरा हुआ। और मनुष्य की भाषा में कपोत बोलता है, महाराज यह बाज मुझे मेरा पीछा कर रहा है, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में हूं। तो परम कोमल हृदय महाराज श्री करुणा से द्रवित हो गए, उन्होंने कहा ठीक है ठीक। फिर बाज ने कहा, महाराज यह मेरा भोज्य है, मैं बहुत दूर से इसका पीछा करते हुए आ रहा हूं, मैं भी थका हूं, मुझे भूख लगी है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मेरा भोजन है, छोड़ दीजिए मैं इसको खाऊंगा। तो श्री महाराज ने कहा कि नहीं, यह मेरी शरण में है, तुम्हारे भूख को बुझाने के लिए मैं दूसरा उपाय करता हूं। इस कबूतर के पास जितना मांस है उतना मांस मैं दूसरे जीव का दे दूंगा। वो कहता है नहीं, मैं दूसरा नहीं खाऊंगा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मेरे भोजन, इसको छोड़िए। तो श्री महाराज ने कहा कि नहीं, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तब बाज ने कहा कि यदि आप उसके बराबर अपना मांस देंगे तब मैं मान जाऊंगा। चिल्ला रहा था पक्षी, मेरा है मेरा है। तो महाराज ने कहा ठीक है। तो एक तराजू के एक पलड़े पर रखा गया कबूतर और एक पलड़े पर महाराज शिवी अपने पैर के नीचे का मांस काटे, दाहिने पैर का, उस पर रख। लेकिन कबूतर बहुत भारी निकला, तब जांघ का मांस काटे, हाथ का मांस काटे, एक हाथ से काट रहे थे, कई जगह इधर का काटे इधर का काटे, अंत में नहीं तुलित हुआ तो वे स्वयं ही पलड़े पर चढ़ गए। ठीक है मुझे खा जाओ पूरा, लेकिन जब ही चढ़े तेन ही पलड़ा झुक गया और भगवान इंद्र अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और अग्निदेव ने कहा धन्य है महाराज, आपकी कीर्ति स्वर्ग में गूंज रही है, बिल्कुल सत्य हम लोगों ने पाए, एक शरणागत की रक्षा के लिए आपने अपना एक देह दे दिया और दधीची मुनि अपनी अस्थि दान कर दिए देवताओं के हित के लिए। वो भी कथा बार बार आप लोग सुने। तो इन महापुरुषों की गाथा बलि महाराज जैसा महाभागवत सुना है और उसको आदर्श मान रहा है,
भूतानाम श्रेय कुर्वती, साधारण प्राणियों की रक्षा के लिए वे लोग अपना देह दे दिए, और हमारे पास स्वयं भगवान आए हैं और मैं धन भी न दूं, और ये देह मांगेंगे तो देह दे दूंगा, फिर धन देने में क्या सोचना है। इस तरह का अपना दृढ़ निश्चय सुना रहे। को विकल्प धरा दिश, धरा आदि से पृथ्वी आदि दान करने में क्या सोचना है। वे तो साधारण प्राणियों के हित के लिए अपना देह दे दिए, हमारे यहां तो साक्षात भगवान आए हैं जैसा आप बता रहे, तो इनको धन देने में क्या आनाकानी करनी, क्या सोचना है, दू या न दू। बहुत ही सुंदर वाक्य है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय समाज में बड़े बड़े दानियों की, त्यागियों की कथा चलती रहती थी। तब तो बलि महाराज दधीचि मुनि के विषय में सुने हैं, शिवी महाराज के विषय में सुने हैं। दध्यन शिवी प्रभुत, दधीचि और शिवी आदि ने जीवों के हित के लिए अपना देह दे दिया। ये हम लोगों को सीखने के लिए दिया गया है भागवत में। भागवत सुनने का मतलब यही है कि हम लोग थोड़ा विचार करें, हमको भी भगवान ने देह दिया है, वचन दिया है, ज्ञान दिया है, तो इस देह का, वचन का और ज्ञान का हम कितना दूसरों के हित में प्रयोग कर रहे हैं, इसी में इसका साफल्य है। बलि महाराज दधीचि और शिवी को आदर्श मान रहे हैं और हम लोग बलि महाराज को मान रहे हैं। दे दिया दूसरों को। और भूतानाम शब्द का अर्थ है कि साधारण जीवों के जीने के लिए उन्होंने दे दिया, तो गृहागत विश्वों के लिए क्या मैं धन नहीं दे सकता। अरे जिनका सारा धन है, सारा जगत जिनका बनाया हुआ है, वही प्रभु आकर के हमसे मांग रहे हैं और मैं कह दूं कि नहीं दूंगा। प्रकारांतर से बलि महाराज ने कह दिया कि अगर ये देह मुझसे मांगे तो ये देह दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, और दे ही दिया लास्ट में। कोई विकल्प इसमें क्या सोचना है। इस तरह से अवसर कभी कभी आता है मनुष्य के जीवन में, और भगवान वास्तव में परीक्षा लेते हैं कि यह व्यक्ति क्या करता है। देने की आदत रहनी चाहिए। जो व्यक्ति देना सीख गया, समझिए उसके जीवन में कभी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान दाता है, उसे देखते रहते हैं कौन कितना दे रहा है, तो भगवान पूरा करते हैं, कई गुना पूरा करते हैं, उतना ही नहीं। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। दुस्तेज जैसे भी देह त्यागना, देह देना बहुत कठिन है, दुस्तेज है, लेकिन दुस्तर प्राणों को दे करके लोगों ने जीवों का हित किया। और हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं, आप दीर्घजीवी हैं, जय नियम बुझे ब्रह्मम दैत्यम ग्रह रजतात्म भी अनिवर्त भी तेषां कालो ग्रसित लोका न जसो विगतम भूल। मुझे धन की चिंता नहीं है, मैं धन का लोभी नहीं हूं गुरुदेव, मैं तो कीर्ति का लोभी हूं। वास्तव में बलि महाराज कीर्ति के लोभी नहीं थे, लेकिन लौकिक भाषा में बोल रहे हैं, भगवान के प्रति भक्ति से भरे हैं, वो कीर्ति नहीं चाहिए, लेकिन लौकिक रीति से बोल रहे हैं कि हम, मैं कीर्ति चाहता हूं, जस चाहता हूं, धन नहीं। ये तो धन तो चला जाएगा, शरीर चला जाएगा। आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े दैत्येंद्र हुए और जिन्होंने इस पृथ्वी को भोगा, जय रियम बुझे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ, बड़े बड़े दैत्येंद्र हुए, दैत्यों में बड़े बड़े दैत्यों का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि शुक्राचार्य सबको जानते हैं, देवताओं का उदाहरण नहीं दे रहे हैं। दैत्यों में ऐसे ऐसे दैत्य हुए हैं जिन्होंने अखंड रूप से इस पृथ्वी का शासन किया, इसको भोगा, इसको उत्पादन को, सब कुछ को, लेकिन उनके लोगों को, इस लोक के भोगों को और यहां तक कि परलोक के भोगों को भी काल ग्रस लिया, लेकिन उन्होंने जो जस कमाया इस पृथ्वी पर उसको काल नहीं खा पाया, आज भी वो अजर हैं, अमर। जैसे महाराज दधीचि, महर्षि दधीचि, दधीचि मुनि का वो देह चला गया, वल्लोक भी चला गया, लेकिन उन्होंने जो जस कमाया वो आज तक है, जुग जुग तक गाया जाएगा। जिस महापुरुष का नाम बलि महाराज के मुखारविंद से निकल रहा हो, कितना यशस्वी व्यक्ति है, ये सोचने की बात है। जुग बीतेगा, काल लोक को लोकांतर को नष्ट करेगा, प्रलय होगा, लेकिन इन महापुरुषों की कीर्ति जुग जुग तक निरंतर कायम रहेगी और लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। बलि महाराज अपने गुरु के रूप में दधीचि और शिव महाराज को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं तो कल्याण करूंगा, दूंगा ही। तो इस तरह से कह रहे हैं दैतेंद्र, बड़े बड़े दैतेंद्र हुए राजा जिनका शासन चला गया, बड़े बड़े राजा महाराज हम लोगों के इतिहास में, जैसे महाराज हरिश्चंद्र, जजाति महाराज, पुरुरवा महाराज, महाराज भरत, सब चले गए, उनका शासन, उनका लोक, उनके स्वजन, उनका देह सब कुछ चला गया, लेकिन उनकी कीर्ति को काल नहीं खा सका आज तक, उनकी कीर्ति आज तक अमिट, कालातीत है, काल जयी हो गए, उनका नाम अजर है हमारा। भले मूर्ख लोग उनके बारे में न जाने, लेकिन जितने भी विद्वान है वो लोग जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कितने महान हुए या राजा श्री भरत। और आजकल के लोगों को तो आधुनिक काल के लोगों के विषय में ही सुनने से फुर्सत नहीं, टीवी में देख रहे हैं कौन लोग हैं, सब थर्ड क्लास के आदमी भरे पड़े, उन्हीं के बारे में देखते हैं सुनते हैं। इन जरा दधीचि मुनि, राजर्षि भरत, अम्बरीश महाराज, नहुष महाराज, जजाति, भगवान राम, कृष्ण, उनके बारे में सुन करके पढ़ करके देखिए तब चित्त कितना ऊंचा उठता है। इनका चरित्र गाया जाता था, वास्तव में जैसे भागवत सप्ताह हो रहा है, इस तरह की कथाएं प्रतिदिन होती थी पहले, प्रतिदिन घरों में, इसीलिए लोगों का चित्त बहुत उदार रहता था, महान रहता था, तुच्छ भोगों में उनका चित्त कभी फंसता ही नहीं था। इसलिए तो बलि महाराज तैयार है, उनके जीवन में थोड़ा भी लक्ष्य नहीं कि हमारे पास एक पैसा रहे या ना रहे, भोग रहे या ना रहे, चाहे परिवार पूरा मर जाए, बिखर जाए, कुछ भी हो, इसकी उनको चिंता नहीं थी, देने के लिए प्रस्तुत। तो मुझे कीमति चाहिए, ये भोग और देह जस ये लोक नहीं है, तो काल सब कुछ खा जाता है। और बाद में कहते हैं सुलभा से निवृत्तास्तम त्यज न तथा तीर्थ आया तो श्रद्धा ये धन त्यज। हे गुरुदेव,